अध्याय दो, जीवन वृत्त एवं रचनाएं। घनानंद, आनंद घन और आनंद को लेकर हिंदी साहित्य के इतिहास में पर्याप्त विवाद रहा है। इन तीनों नामों से संबंध रचनाओं और तथ्यों को देखने से पता चलता है कि इस नाम के एकाधिक व्यक्ति हुए हैं। हमें इस विवाद में न पड़कर अपने विवेच्य कवि की प्रामाणिक रचनाओं को ही अध्ययन का आधार बनाना है। हमारे लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि कवि के प्रामाणिक जीवन वृत्त, जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि के संबंध में माथापच्ची करें। फिर भी किसी कवि या रचयिता की रचना को समुचित रूप में समझने के लिए उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं की जानकारी कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। घनानंद रीतिकाल के अंतर्गत ऐसे कवि हुए हैं जिनका जीवन उनके काव्य से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ संक्षेप में उनके जीवन पर केवल इस दृष्टि से विचार किया जाएगा जिससे कि उनकी काव्य प्रेरणा के मूल स्रोतों को पहचाना जा सके। अन्य अधिकांश रीतिकालीन कवियों की भांति अपने जीवन के आरंभ में घनानंद का संबंध भी राज दरबार से था। वे एक विलासी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे, एक कवि के रूप में नहीं वरन एक प्रतिष्ठित कर्मचारी के रूप में। वे मीर मुंशी थे या वजीर, इस संबंध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि राज दरबार में उनकी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अन्य दरबारियों की उनके प्रति ईर्ष्या से मिलता है। राज दरबार में रहते हुए वे अपने कवित्व शक्ति के लिए नहीं वरन गायन कला में निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे। दरबार की एक सुजान नामक प्रतिष्ठित वेश्या से उनका प्रेम था। सुजान अपने रूप और गुण के कारण बादशाह के भी पर्याप्त निकट थी। बादशाह की कृपा और सुजान के प्रेम के कारण अन्य दरबारियों के ईर्ष्या ने द्वेष का रूप धारण कर लिया। उन सबके सम्मिलित कुचक्र के कारण घनानंद को राज दरबार से निष्कासित होना पड़ा। राज दरबार से घनानंद के निष्कासन के विषय में एक किंवदंती प्रचलित है। षड्यंत्र की भावना से प्रेरित दरबारियों ने बादशाह को बताया कि घनानंद गाते बहुत अच्छा है। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था कि ये अपनी कला को दरबारी नहीं बनाना चाहते, अतः बादशाह के अनुरोध पर भी घनानंद ने नहीं गाया। जब दरबारियों ने बताया कि सुजान के कहने पर यह अवश्य गाएंगे, तो उसे भी दरबार में बुलाया गया। उसके अनुरोध पर घनानंद ने इतना तन्मय होकर गाया कि वे राज दरबार के सामान्य शिष्टाचार को भी भूल गए। जिस समय उनका गाना समाप्त हुआ, उस समय उनका मुख सुजान की ओर और पीठ बादशाह की ओर थी। इस अशिष्टता के कारण दरबारियों का षड्यंत्र सफल हुआ। फलस्वरूप इन्हें राज दरबार से निकाल दिया गया। दरबार से चलते समय घनानंद ने सुजान से भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। इससे उनके मन को गहरी ठेस लगी। काफी समय तक इधर उधर भटकते हुए ये सुजान के विरह में विह्वल भाव से काव्य रचना करते रहे। सुजान हित इस काल की इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अंत में लौकिक प्रेम से विरक्त होकर वे वृंदावन चले गए और वहां निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर सखी भाव के उपासक बन गए। किंवदंतियों के अनुसार ये नादिर शाह के आक्रमण में मारे गए, लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विस्तार से यह सिद्ध किया है कि इनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण में मथुरा में हुई। उन्हीं के अनुसार घनानंद की जन्मतिथि 1673-74 के आसपास रही होगी। इस तिथि को इनके जीवन से संबद्ध अन्य तथ्यों के प्रकाश में 10 से 14 वर्ष आगे पीछे ले जाया जा सकता है। उपर्युक्त विवरण से कई तथ्य हमारे सामने उद्घाटित होते हैं। पहला तो यह कि घनानंद लौकिक प्रेम में दीक्षित होकर भगवत प्रेम की ओर उन्मुख हुए थे। दूसरा यह कि लौकिक प्रेम सुजान पात्र ही उनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही है। तीसरा यह कि इन्हें जीवन में एक तरफा प्रेम मिला था जो इनके काव्य में सर्वत्र देखा जा सकता है। चौथा यह कि अपने जीवन के आरंभ में ये एक अच्छे गायक थे, लेकिन सुजान के वियोग के बाद काव्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। फलस्वरूप इनके संयोग चित्रण में भी वियोग की एक काली छाया मंडराती हुई दिखाई देती है। पांचवा यह कि हिंदू कायस्थ जाति के होते हुए भी इन्होंने मुसलमान वेश्या से प्रेम कर अपनी स्वच्छंद प्रकृति का परिचय दिया था। छठा यह कि सामाजिक विधि निषेधों का उल्लंघन इन्हें अन्य रीतियों के उल्लंघन की ओर उन्मुख करता है। यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि घनानंद अपने समय के पर्याप्त विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं। जहाँ एक और ब्रजनाथ हित वृंदावन दास आदि जैसे बहुत सारे इनके प्रशंसक रहे, वहीं दूसरी ओर इनके निंदक भी रहे हैं। राज दरबार में दरबारियों के ईर्ष्या और बादशाह के कोप भाजन बनने से लेकर उनके कवि एवं भक्त जीवन में भी तरह तरह के आक्षेप किए गए हैं। निंदा की दृष्टि से घनानंद से संबंधित एक अज्ञात नामा कवि का भड़ुआ मिलता है, जो लगभग 1755 ईस्वी के यश कवित्त नामक संग्रह में संकलित है। इसमें घनानंद के कायस्थ होने के साथ ही उनके ब्रज में आने और स्थिर अपयश धारण करने का अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। इसके माध्यम से घनानंद के जीवन से संबंध बहुत से तथ्यों की भी पुष्टि होती है। उसके कुछ उदाहरण दर्शनीय है। पहला, कभूक खुजावत मैं छुअती ते ही आनंद को तब हौ सरता हूँ, वह ईश कहूँ घन आनंद को जो सुजान इजार की जूत करता हूँ। दूसरा, करे गुरु निंदा क वह हुरकनी कौ बंदा महा, निर्गिनी गंदा खात पानीर और नान है, बहन को चुरावे ताको मजबून लावे कूर, कविता बनावे गावे रिजौली सीतान है, पाप को भवन करे अगम गमन ऐसो, मुड़िया आनंद घन जानत जहान है। तीसरा, डफरी बजावे डोब डाढ़ी सम गावे, काहू तुर कह दिशावत तब पावे झूठो नाम है, उर्किन सुजान तुरकिनी को सेवक है, तजी राम नाम वाको पूजे काम धाम है, पीव भंग कुंडा संग राखे गुंडा, भसुंडा आनंद घन मुंडा सारे नाम है। चौथा, मुदित आनंद घन कहते विधाता सोयाऊँ, खाल को आसान दी जो गाही गारी गोही गावे गई, मुमुख को पी के दान करियो सुजान प्यारी, हुरी की नितुरे की निथुके सुख पावे गई, धोती को इजार दुपट्टी को पेश बाजे और देहूंगे रुमाल ताको पूछना बनावेगी, पागिया पाए अंदाज कीजिए गरीब निवाज, भरी गए भय मोमन पिलिंग पर आवेगी। घनानंद ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 66-67। इस भड़गुए के रचयिता ने घनानंद की निंदा के बहाने बहुत से प्रमाणिक तथ्य हमारे सामने उपस्थित कर दिए हैं। सुजान नामक मुसलमान वेश्या से प्रेम, किसी मुसलमान का दरबारी होना, दूसरे की वाणी सुनकर कविता चुराकर बनाना और उसे गाना, ब्रजभूमि में कहीं बाहर से आकर भक्त आदि घनानंद से संबद्ध किंवदंतियों की ये छंद पूरी तरह प्रमाणिक सिद्ध करते हैं। जिस प्रकार राजदरबार की प्रतिष्ठा से व्यापारियों के दरबारियों के द्वेष के भाजन बने, ठीक उसी प्रकार अपनी कवित्व शक्ति और प्रगाढ़ भक्ति भावना के कारण अपने प्रतिद्वंदियों के ईर्ष्या के पात्र भी बने। निंदकों और ईर्ष्यालुओं के साथ ही घनानंद के प्रशंसक भी कम नहीं थे। इनकी काव्य प्रतिभा से चमत्कृत होकर ब्रजनाथ की प्रशंसा इसका स्पष्ट प्रमाण है। घनानंद के निंदकों को लक्ष्य करके ब्रजनाथ ने अपने रोष को इस प्रकार प्रकट किया है। कोट विषय करी ओट महा, नहीं नेह की चोट है जो पहचान है, बात के गूढ़ न भेद न जानत, मूढ़ तऊ हठी बादन ठान है, चाह प्रवाह अताह परे नहीं, आप ही आप विचक्षण मान है, पूछ बिछान बिना पशु जो सुकहा घनानंद बानी बखान है। घनानंद कवित्त चाचा हित हरिवंश दास ने अपनी हरिकलावेली में घनानंद को अत्यंत सम्मान के साथ इस प्रकार स्मरण किया है। आनंद घन को ख्याल कि गायो खुली गए नयन, सुनत महावेवल भयो मन नहीं पायो चैन, ऐसे हूँ हरि संत जन जनमनि मारे जाय, यह अति देख हियो भयो लीनो सोच दबाय। घन आनंद ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 59। घनानंद की निर्मम हत्या के प्रत्यक्षदर्शी इस महात्मा ने उनके शव पर आंसू बहाते हुए शोकातिरेक में विवल होकर लिखा है, बिरहो तो तायो तन निवाहियो बन साचोपन, धन्य आनंद घन मुख गाय सोई करी है, गाढ़ो ब्रिज उपास जिन देह अंत पूरी पारी, रज की अभिलाषा तो तहाँ ही देह धरी है, वृंदावन ही तुरूप तुमहु हरि उड़ाई धुरी, आए पए साचे निष्ठा जने की ही लखी परी है। घनानंद ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 60। यहाँ वृंदावन दास ने भक्त कवि के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। विरह के साक्षात मूर्ति घनानंद ने अपनी कथनी और करनी अर्थात अपने जीवन और काव्य में एकात्म स्थापित किया था, जिसे मुख गाय सोई करी है के माध्यम से संकेतित किया गया है। राधा कृष्ण दास ग्रंथावली में एक विवरण आया है। घनानंद से संबंध एक किंवदंती पर आधारित इस विवरण में कहा गया है कि मथुरा में कतलेआम के समय घनानंद ने सैनिकों से कहा कि मुझे धीरे धीरे देर तक तलवार की घाव दो। तलवार की घाव के साथ ब्रज की धूल में लौटते हुए इन्होंने प्राण त्याग किया। उपर्युक्त कवित के तीसरे बंद में इस तथ्य की ओर भी संकेत हुआ है, ऐसे हूँ हरि संत जन मारे जन मन आई के उल्लेख द्वारा जो वृंदावन दास जी ने घनानंद की मृत्यु के कारण को एकदम निर्विवाद बना दिया है। अपने व्यक्तित्व की भांति ही घनानंद का कृतित्व भी रीतिकालीन अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक व्यापक और गहरी भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। छंद विधान की दृष्टि से भी यह अपने समकालीन कवियों से पर्याप्त भिन्न है। कबित, सवैया, दोहा, सोरथा, अरल, शोभन, त्रिभंगी, ताटंक, निशान, सुबेर, धनाक्षरी, चौपाई, प्लवंग, छप्पय, विष्णुपद आदि विभिन्न छंदों के साथ ही इन्होंने पद शैली में राग रागिनियों पर आधारित बहुत बड़ी संख्या में गीत भी लिखे हैं। इनके गीत सूर, तुलसी, कबीर, बीर आदि के गीतों से पर्याप्त भिन्न और शास्त्रीय संगीत की मर्यादा से पूरी तरह मर्यादित है। अधिकांशतः चार चार पंक्तियों में आबद्ध ये गीत ताल और सुर के अद्भुत आरोह अवरोह के माध्यम से गणानंद के संगीत मर्मज्ञता को प्रमाणित करते हैं। एक विशिष्ट संगीतज्ञ होने के नाते इनके परंपरागत छंद विशेषतः कवित्व सवैयों में भी संगीतात्मकता का सुंदर विधान मिलता है। गणानंद ग्रंथावली में संकलित रचनाओं को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि भाव वैविध्य के साथ ही शैली वैविध्य का भी सुंदर विधान गणानंद ने किया है। भाषा की दृष्टि से यह मुख्यतः ब्रज भाषा के कवि हैं, लेकिन पूर्वी हिंदी, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी आदि के साथ ही अरबी, फारसी मिश्रित भाषा के प्रयोग में भी इन्होंने अपनी निपुणता का परिचय दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गणानंद ग्रंथावली के अंतर्गत इनकी निम्नलिखित रचनाओं को स्थान दिया है। सुजानहित, कृपा कंद निबंध, योगवेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रजविलास, सरस बसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, ऋषभानुपुर सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरिपूजन, विचारसार, दानघटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, धाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रसना यश, गोकुल विनोद, ब्रज प्रसाद, मनोरथ मंजरी, मुरलिका मोद, ब्रज व्यवहार, गिरिगाथा, ब्रजवर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित्त संग्रह, स्फुट पदावली और परमहंस वंशावली। ऊपर गिनाई गई रचनाओं में से अधिकांश स्वतंत्र रचना न होकर भिन्न भिन्न छंदों से भिन्न भिन्न विषयों के संक्षिप्त वर्णन है। जैसे प्रेम सरोवर केवल 8 दोहों में वृंदावन के एक सुंदर स्थल की झांकी है। इसी प्रकार वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति पावस, ब्रजविलास, सरस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पहेली, रसना यश, छंदाष्टक, त्रिभंगी आदि 2 से लेकर 6 पृष्ठों तक की अत्यंत छोटी रचनाएं हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से विचारणीय है कि इन सभी रचनाओं को निर्विवाद रूप में गणानंद द्वारा रचित मान लेना कठिन है। उनके विरक्त होने से पूर्व की सुजानहित और विरक्ति के बाद की पदावली सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो उनकी 3/4 से भी अधिक कृतित्व को समेटे हुए हैं। छोटी रचनाओं में प्रेम पत्रिका, काकंद निबंध, प्रेम पद्धति आदि को भी निर्विवाद रूप से गणानंद कृत माना जा सकता है। अतः गणानंद ग्रंथावली में संकलित लगभग 80% रचनाएं निश्चित रूप से प्रमाणिक मानी जा सकती हैं। यहाँ इस तथ्य की ओर भी संकेत कर देना आवश्यक है कि गणानंद की रचनाओं का सबसे प्राचीन संग्रह गणानंद कवित्त है। इसे उनके समसामयिक एवं मित्र ब्रजनाथ ने बड़े श्रम से तैयार किया था। इसमें लगभग 500 कवित्त सवैये रखे गए हैं। कृपाकंद निबंध, प्रेम पत्रिका, दानघटा आदि छोटी रचनाओं के कवित्त सवैयों के साथ ही सुजानहित के अधिकांश कवित्त सवैये भी इसमें आ गए हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का तो यहाँ तक कहना है कि गणानंद कवित्त की ही किसी अस्त व्यस्त प्रति के आधार पर सुजानहित संग्रह तैयार किया गया है। इस संबंध में वास्तविकता चाहे जो भी हो, लेकिन यह स्पष्ट तथ्य है कि गणानंद कवित्त में 24 ऐसे कवित्त सवैये हैं जिन्हें गणानंद ग्रंथावली की किसी भी रचना में स्थान नहीं मिला है। अतः ग्रंथावली के अंतर्गत इन्हें प्रकीर्ण शीर्षक में रखा गया है। अपने विषय वस्तु, भावभंगिमा, भाषा शैली आदि सभी दृष्टियों से इन कवित्त सवैयों की प्रामाणिकता के संबंध में किसी भी प्रकार की आशंका की गुंजाइश नहीं है। कृपाकंद निबंध, प्रेम पत्रिका, दानघटा आदि के कवित्त सवैयों का घनानंद कवित्त में समावेश कवि के भक्त रूप का भी संकेतक है। इस प्रकार यह संग्रह लौकिक श्रृंगार और भक्ति भावना दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि ग्रंथावली में संग्रहित पदावली को इसके साथ मिला दिया जाए तो विवेच्य कवि का समग्र कृतित्व हमारे सामने आ जाता है। इसके आधार पर उसके काव्य की अंतर्वाह्य सभी विशेषताओं का समुचित आकलन किया जा सकता है। वैसे घनानंद की साहित्यिक कृति का प्रमुख स्तंभ सुजानहित ही है। यह मुख्यतः लौकिक श्रृंगार की रचना है, जिसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण है। शेष सभी रचनाएं किसी न किसी रूप में कवि की भक्ति भावना व्यंजित करती हैं।